వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం
వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురు అజోపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానామీశ్వరోపి సన్
ప్రకృతిం స్వామధిష్ఠాయ సంభవామ్యాత్మమాయ
ప్రకృతిం స్వామధిష్ఠాయ సంభవామ్యాత్మమాయ యదాయ ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత
అభ్యుత్థానం ధర్మస్య తదాత్మానం శ్రేయాంగం
అభ్యుత్థానం ధర్మస్య తదాత్మానం
ప్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ దుష్కృతాం
పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం
ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ
ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సమవామి యుగే యుగే
జన్మ కర్మ చ మే దివ్య మేవం యో వేతి తత్వతః
జన్మ కర్మ చ మే దివ్య మేవం యో వేత్తి తత్వతః
స్వదేహం పునర్జన్మ నేతి మామేతి అర్జున
యత్వదేహం పునర్జన్మ నేతి మామేతి అర్జున వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయ మాముపాశ్రిత
అహరో జ్ఞాన తపసా పూతా మత్ భావ మాగతా
బహవో జ్ఞాన తపసా భావమాగత
వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం
వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం Krishna Vande Jagadgurum. Krishna Vande Jagadgurum. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram. Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
Shri Ram Jai Ram Jai Jai
Ram. Ram. Dheyam Sada Paribhavagnam Abhishtadoham Tirthaspadam Shiva Virinchinutam Sharanyam Bhrityartiham Pranatapala Bhavabdhipotam Vande Mahapurushate Charanaravindam Tyaktva sudus tyajasure psitarajya lakshmi dharmishtha arya vachasa yadaga daranyam maya mrigam daitaye psitaman vadhava Vande Mahapurushate Charanaravindam Kasturi Tilakam Dalat Patale Vakshasthale Kaustubham Nasagre Varamauktikam Kartale Venukare Kankanam Sarvange Harichandanam Sulalitam Kandhe Chamuktavali Gopastri Pariveshtito Vijayate Gopal Chudamani Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Yosyotprekshakvadi madhyanidhane yovyaktajiveshvarum Yah srishtvedamanu pravishyarishina chakre pura shastita Yam sampadya jahatyaja manushai Supta kulayam yatha तं कैवल्य निरस्तयो निमभयं ध्यायेदजस्रं हरिं। सच्चिदानंद घनानंद कंद परब्रह्म परमात्मा को परमात्म प्राप्त संत महापुरुषों को सादर प्रणाम कर परमात्म प्राप्ति की पावन इच्छा रखने वाले समस्त सहृदय सज्जनों एवं माताओं बहनों को हार्दिक अभिनंदित कर वर्तमान समय को देखते हुए अध्यात्म साधना को किस प्रकार से संपन्न किया जा सके ऐसा विचार करके सेवा में नम्र निवेदन करने का प्रयास करता हूं। भगवान अनादि हैं और अनंत हैं, उनकी वाणी भी अनादि है और अनंत है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता का आविर्भाव जिस युग में हुआ है उस युग के प्रणेता, उस युग के सबसे बड़े अवतार, उस युग के सबसे बड़े उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बहाने से प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देने के लिए जो कुछ कहा है वो हजारों हजारों आगे की पीढ़ियों तक को ध्यान में रख करके कहा है। जो बात अर्जुन के समय में लागू हो सकती थी वही बात आज लागू हो सकती है और वही आज से हजारों वर्षों के बाद भी लागू हो सकेगी, ऐसा विचार करके भगवान ने गीता में उपदेश दिया है। इसका क्या पता कि सबसे पहली बात तो यह है कि भगवत गीता की भाषा बड़ी सरल है। भगवत गीता की टीका जिन महापुरुषों ने की है उनकी संस्कृत समझना बड़ा कठिन है, लेकिन सामान्य हिंदी का भी ज्ञान रखता हो तो उसको भगवत गीता की भाषा दो बार चार बार पढ़ने पर समझ में आ जाए। कई कई श्लोक तो इतने सरल हैं कि उनको पढ़ते ही बोलचाल की भाषा में शब्द देने के कारण से वो तात्पर्य समझ में आ जाता है। भगवान को शायद ये मालूम होगा कि संस्कृत भाषा जन भाषा नहीं रहेगी, संस्कृत भाषा आम लोगों की बोली चाली में नहीं रहेगी, और मेरा उपदेश यदि कठिन शब्दावली में होगा तो कैसे पहचाना जाएगा हर आदमी के द्वारा, पहली बात। दूसरा, संभवतः भगवान ने यह भी ध्यान में रखा है कि लोग इतने कार्य में व्यापृत है, कार्य में व्यस्त है, उनके सामने लंबा चौड़ा उपदेश दिया जाएगा तो इतना उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा उपदेश की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे कोई आदमी कहीं से आ रहा हो और केवल इतना ही पूछता हो कि प्रेमपुरी सत्संग आश्रम है वो कहाँ है भाई, आप बस उस अमुक अमुक रोड पर, अच्छा ठीक है, क्योंकि उसको यहां सब मालूम तो है कौन सी किस सड़क का क्या नाम है और वो किधर से जाती है क्या मालूम तो है, थोड़ा एक आश्रम उसके ध्यान में नहीं रहा तो साहब अमुक रोड के ऊपर वो आश्रम है, इशारा काफी है, क्योंकि वहां तो वो सिग्नल में खड़ा है इसलिए वो थोड़ा इशारा ही बोला जाएगा, चलती गाड़ी में इतना ही पूछा जाएगा किधर चलेंगे, इधर चले बस। ऐसे
भगवान ने भी अर्जुन को युद्ध के समय में उपदेश दिया। गीता की भूमिका है कि प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, अब वह शस्त्र उठने ही वाले हैं, भेर नगारियां सब बज चुकी हैं, शंख वगैरह सब बजा दिए हैं सेनापतियों ने, और सबको इशारा बा सब थोड़ी देर में युद्ध होने ही वाला है, परंतु फिर भी थोड़ा सा समय बाकी था। वो किस बात के लिए था? वो बस युद्ध होने ही वाला था, पर उस समय में हमारे युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करने के लिए पितामह भीष्म के पास, गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहे थे, कृपाचार्य के पास जा रहे थे, प्रणाम आदि का शिष्टाचार बाकी रहा। इतने में अर्जुन में ये व्यामोह पैदा हुआ और भगवान ने गीता कही। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि अध्यात्म की साधना इतनी कठिन नहीं है, अध्यात्म की जिज्ञासा होनी चाहिए। मेरा कल्याण किस बात में है, मेरा कल्याण कैसे हो, मैं अपना निश्चित कल्याण चाहता हूं, ये बात जिस समय मनुष्य के पैदा हो जाएगी उस इच्छा में उसका कल्याण निहित है। अर्जुन को मालूम नहीं था कि भगवान कोई साक्षात कोई बहुत बड़े भगवान है क्या। अर्जुन तो बस इतना है कि भगवान को अपना मानता था, भगवान के साथ सखा भाव था, और अर्जुन ने कह भी दिया बिचारे ने बड़ी सरलता से कि सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम, मैं आपकी महिमा को जानता भी नहीं था, और सखा समझ करके कभी भोजन में कभी उठने में कभी बैठने में जैसे और मित्र मित्र के साथ बर्ताव करते हैं वैसे मैंने आपका बहुत तिरस्कार किया, मैं तो आपको जानता भी नहीं था इतना। और भगवान ने जब कहा कि निश्चित कल्याण बताओ तो भगवान कितने खुश हुए होंगे वो तो भगवान ही जाने। देखो भगवान ने कृष्ण रूप में कितनी लीलाएं की हैं, उन सब लीलाओं में कितना कितना प्रेम लीला का वर्णन हुआ है, रास लीला का वर्णन हुआ है। यदि गीता का अवतार नहीं हुआ होता तो भगवान की एक बहुत बड़ी लीला बाकी रह जाती, परंतु ये उपदेश देने और लीलाओं में भगवत संकल्प काम करता है। रास लीला में देखो कि भगवान अभी तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे, मन में आई भगवान के तब उन्होंने रास लीला रची। माखन चोरी है वो जो लीला की वो अगलों की भावना के अनुसार की, और खुद के भी मन में तो थी। सब लीलाओं को करने पर ये गीता सुनाने की भी भगवान के मन में बहुत थी, पर गीता सुना नहीं सके। क्यों नहीं सुना सके कि जब तक कोई सन्मुख न हो, कल्याण के सन्मुख न हो, तब उसको उपदेश देना व्यर्थ होता है। ये उपदेश तभी लागू होता है जब अंदर उस उपदेश के सन्मुख होता है। सीपी जब बूंद के सन्मुख होती है तब वो, यदि बूंद उसके मुंह में जाती है तो वो मोती होती है। हर बूंद मोती नहीं होती। तो अर्जुन ने जब ये कहा कि मैं इन युद्ध के अंदर कल्याण नहीं देखता हूं, तो भगवान ने कहा अब मुझे मौका मिल गया गीता सुनाने का। तो जैसे अर्जुन ने भरे व्यस्ततम कार्यक्रम में कल्याण की इच्छा की है, ऐसे ही यदि संसार में कोई व्यक्ति अपने व्यस्ततम जीवन में यह सोचता है कि मुझे मेरा निश्चित कल्याण करना है, तो भाई उसके कल्याण के लिए कोई चीज बाकी नहीं रह सकती। कल्याण पहले होगा, दूसरा काम बाद में होगा। संतों ने तो यहां तक कहा है कि यदि मौत आती हो सामने, तो मौत आ रही है कि भाई अब इस आदमी का जीवन का समय समाप्त हो गया, मरने वाला है, लेकिन उसके मन में कल्याण की इच्छा है, तो पहले भगवान कल्याण की इच्छा करेंगे, बाद में प्रारब्ध के अनुसार शरीर का क्षय होगा, क्योंकि शरीर दिया ही कल्याण करने के लिए है। ठीक है, प्राइमरी उसको थोड़ा समय दे दिया, सप्लीमेंट्री समय दे दिया, वो आयु बढ़ जाती है उससे आयु। और दूसरी बात, भगवान ने अर्जुन से एक बात और कही छठे अध्याय में। अर्जुन ने कहा कि महाराज कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि मनुष्य अध्यात्म साधना में चलता है, लेकिन चलते चलते न जाने किस कारण से कभी वो अध्यात्म साधना से चूक जाए और उसी समय मौत आ जाए। तो संसार की तो इच्छा थी नहीं, परमात्मा की साधना पूरी नहीं हुई, तो वो दोनों से ही गया तो कहां जाएगा वो। जैसे बदलों का समुदाय में से एक बदल का टुकड़ा वो आंधी के झोंके से बड़े टुकड़े से अलग हो गया, अलग होने के बाद में फिर वो वायु में तितर बितर हो जाकर के वायु में ही नष्ट हो जाता है। ऐसे ही कल्याणकामी पुरुष बेचारा किसी गलती से कल्याण से चूक गया तो फिर वो इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट होता है क्या, इधर से या इधर से भी गया और उधर से भी गया। तो भगवान ने पूर्ण आश्वासन देते हुए कहा, पार्थ नैवे है नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। देखो संबोधनात्मक श्लोक ये एक ही कहा भगवान ने, पहले संबोधन देना और फिर बोलना। पार्थ नैवे है नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, कितना भगवान ने अपने पन से कहा, हे पार्थ, पार्थ माने पृथा पुत्र, हे कुंती पुत्र। पार्थ संबोधन गीता में 9 बार आए हैं और श्लोक का पहला ही पहला शब्द पार्थ, ये पहली बार आया है और अंतिम बार आया, एक बार ही आया पार्थ। जैसे किसी का दिल भर जाए किसी को देख करके, पार्थ नैवे है नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। यदि अपने कल्याण की इच्छा हो गई और पूरी न हुई तो इधर उग जाएगा या उधर से भी गया, ऐसे उसका पतन हो जाएगा क्या ना, ऐसा नहीं होगा। पार्थ नैवे है नामुत्र, न तो संसार में विनाश होगा न अगले लोक में उसका विनाश होगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण की तरफ चलने वाले व्यक्ति का कभी भी दुर्गमन नहीं होता, दुर्गति नहीं होती, उसका विनाश नहीं होता। इतनी भगवान के कल्याण की इच्छा की पूर्ति के अंदर लगन है। ये संसार की जितनी जितनी संपत्तियां हैं, जितना वैभव है, जितनी शक्तियां हैं, ये वास्तव में शक्तियां कल्याणकामी पुरुष के लिए हैं। अब हमने हमारा कल्याण करने का मार्ग छोड़ दिया और संसार का वैभव, संसार की शक्तियां, इनको केवल संसार में लगाने में रख दिया, ये हमसे बड़ी भारी भूल हो गई। भागवत में लिखा है कि भाई ये संसार क्यों बनाया, तो बड़ा अच्छा उत्तर दिया। 9 योगेश्वरों के बीच में बात चल रही थी तो कहा कि ये संसार क्यों बनाया कि स्वयं मात्रात्म प्रसिद्ध है। संसार जो कुछ भगवान ने बनाया अपने प्यारे भक्तों के लिए बनाया कि मेरी भक्ति करने वाले को कोई तकलीफ ना हो। जैसे पिता माता अपने बच्चे का भविष्य देखकर उसकी सारी सुविधा जुटाते हैं, इसी प्रकार से भगवान ने हम लोगों को संसार की सुविधा अध्यात्म के लिए दी है और हम यहाँ की सुविधाओं को संसार के भोग के लिए उनको उन सुविधाओं का व्यय करते हैं। ये यहां भूल होती है। कल्याण की इच्छा यदि हो जाए तो फिर कल्याण में देरी नहीं है। जितनी हमसे भूल होती है वो कल्याण की इच्छा हमारे अंदर, कल्याण की जो इच्छा है वो जागृत नहीं हो रही है, इस कारण से भूल हो रही है और कोई भूल का कारण नहीं है। इसलिए भगवान जितना गीता में आश्वस्त करते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, इतना स्पष्ट कहीं इतनी बात नहीं आती। और इस छोटे से छोटे ग्रंथ में भगवान ने कई बातों का रिपीटेशन भी किया है, उनको दोहराया है। अब कोई कहे कि दोहराया क्यों, तो बताया गया है कि जहां उपदेश देने का भाव, किसी को समझाने के लिए कुछ कहा जाता है उसमें पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। एक काव्य लिखते हैं हम, एक कोई रचना लिखते हैं, तो रचना के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो उसका रिपीटेशन उसका दोष माना जाएगा, वहां पुनरुक्ति दोष है। लेकिन जहां किसी को समझाना हो कि देखो अमुक जगह जाओ और ये दवाई लानी है, देखो तो याद रखना हो ये दवाई लानी, तो और कोई मत ले आना, इसके समान और भी कोई आएगी वो मत लाना, तुम यही दवाई लाना, ऐसे तीन चार बार कहेंगे वो पुनरुक्ति दोष में नहीं आता, क्योंकि वो समझने समझाने की वृत्ति में है, समझने समझाने के भाव में है, इसलिए वहां पुनरुक्ति दोष नहीं होता। तो गीता में पुनरुक्ति भी आई है, तो ये क्या है, ये युग युग, ये किसी बात को ठीक हृदय में बैठाने के लिए भगवान ने कहा है। और इन सब बातों के साथ, जैसे अपने कल भी बात चली थी, भगवान ने सबसे बड़ी बात तो एक ही बताई है कि भाई अर्जुन तुम मेरी तरफ आ जाओ, फिर अपने आप जो है तुम्हारी साधना तुम्हारा मार्ग ये मैं निर्णय करूंगा, मैं बताऊंगा। जैसे माँ है वो बच्चे माँ को, माँ है वो बच्चे को गोद में लेती है, फिर माँ को ही रास्ता बनाना पड़ता है, माँ जाए आए कुछ भी करे वो माँ, माँ ही सब कुछ करती है। पर वो माँ कब करती है, जब वो बच्चे के गोद में, बच्चा बच्चा माँ की गोद में होता है तभी करती है। यदि वो गोद में नहीं है कहीं सोया हुआ है उस समय माँ कुछ नहीं करती है। बच्चे क्या वो अपना दूसरा काम करो भले, लेकिन जिस समय माँ बच्चे को गोद में लिए हुए होती है उस समय वो चलेगी करेगी सब करेगी, उसके लिए सब व्यवस्था खुद बैठाएगी वो। ऐसे ये जीव जो भगवान की शरण में होता है, अर्थात उसके सारे साधनों में भगवान की जो शरणागति की साधना है, वो शरणागति की साधना यदि ठीक बैठती है तो भाई बहुत जल्दी इस जीव का कल्याण होता है शरणागति के द्वारा। शरणागति के लिए अर्जुन को भगवान ने इतना ही कहा कि मन मनाभाव मद भक्तो और मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैशिषी सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि तू मेरा बहुत प्रिय है। तो केवल अर्जुन प्रिय है ऐसा नहीं, सारे मनुष्य प्रिय है भगवान को। देखो गीता के अंदर कई बातें हैं, उसमें एक दो बात ऐसी विचित्र है कि जिससे अपने सबको एक बड़ा संबल मिलता है। भगवान ने एक बात कही कि भाई एक आसुरी संपत्ति है एक दैवी संपत्ति है, तो 26 देवी संपत्ति बताई 16वें अध्याय में, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, और कहा साथ में कि ये देवी संपत्ति तुम में मौजूद है, इस बात को लेकर तो शोक मत करना कि अरे हम देवी संपत्ति कहां से लाए, हमने तो ये कर्म किए हैं, हमने ये पाप किया है, हमने ये गलती की, हम देवी संपत्ति, हम तो है ही नहीं देवी संपत्ति वाले के, ऐसा नहीं मानना। क्यों कि मां सुत संपदम देवी अभिजातो सी पांडव है, तो मानव शरीर में आया हुआ है ना, इसलिए मानव को कभी ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं देवी संपत्ति में हूं या नहीं हूं, परीक्षा करनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए कि मानव शरीर मिलता ही उसी प्राणी को है कि जिसके पास में देवी संपत्तियां मौजूद हैं, जिसको भगवान ने विवेक दिया है इतना बड़ा कुछ समझ के दिया है। देखो कई कई मनुष्य तो होते हैं लेकिन जन्मजात पागल होते, उनकी बात नहीं है, शरीर दृष्टि से मानव को नहीं देखना है, विवेक दृष्टि से देखना है। मानव का निर्माण जो हुआ है वो विचित्र ढंग से और प्राणियों से बड़ा विचित्र बना हुआ है। देखो हमारा शरीर है, इसमें ये सिर का भाग ऊंचा है और ये ज्ञानेंद्रियां ये ऊंचे भाग में स्थित है, उसके बाद ये शरीर यूं है, यूं हमारा शरीर यूं बना हुआ है। पशुओं का औरों का शरीर देख लो आप, उनका खाना पीना और माथा बराबर रहता ही है, अर्थात उनका जो विचार और भोग ये दोनों बराबर के है, उनका विचार वहीं तक काम आता है जहां तक उनका भोग का संबंध होता है। माने पशु पक्षी उतना ही विवेक रखते हैं जितने से उनका शरीर चले। कई पशु ऐसे होते हैं जो आंख नहीं खाते, उनके आंख है चढ़ जाएगा, आंख का जो दूध है उनके चढ़ जाएगा। और कई कई ऐसे पशु हैं जो बड़े प्रेम से आंख को खा लेते हैं। अब उनको ये विवेक किसने दिया? ये भगवान ने दिया विवेक। परंतु वो विवेक केवल खाने पीने सोने उठने इसी में ही काम आता है, और आगे विवेक काम नहीं करता। लेकिन मनुष्य का विवेक खाने पीने तक सीमित नहीं होता, मनुष्य का विवेक है वो उसके उद्धार के लिए काम आता है। इसलिए मनुष्य का निर्माण बढ़ाने का ढंग ये बताते हैं कि भाई भोग है वो जो है वो नीचा है, विचार ऊपर है। अपने विचार शक्ति को ऊपर रखो ताकि भोगेच्छा पर विचार इच्छा का प्राबल्य रहे, उसका जो है शासन रहे। इसलिए मनुष्य को उतने ही भोग के लिए आदेश दिया है शास्त्र, जितने से शरीर चल सके। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की व्याख्या बड़ी अच्छी भागवत में प्रारंभ में की है। धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, कामस्य तत्व जिज्ञासा, माने कामना किसकी के की जा कि न इंद्रिय प्रीति ही, इंद्रियों का स्वाद लेते रहे इसका नाम काम नहीं है। तो काम जीवस्य तत्व जिज्ञासा, कामना है जिससे शरीर जीवित रह सके, वो कामना, वो भी करनी नहीं पड़ती, वो स्वतः समुद्भूत है अपने आप। जैसे भूख है, भूख के लिए आप हम कोई कामना नहीं करते हैं, स्वतः भूख पैदा होती है। और प्यास है, स्वतः भूख पैदा होती है। सर्दी में स्वतः ही कपड़े पहनने की, गर्म कपड़े पहनने की इच्छा होती है। गर्मी में स्वतः ही कम कपड़ा पहनने की और ठंड की इच्छा होती है। तो सर्दी में ठंड से थोड़ा बचे, गर्मी में गर्मी से बचे, भूख लगे तो भोजन किया जाए, प्यास लगे तो जल पिया जाए, ये स्वाभाविक इच्छा है, ये काम है। काम ये पुरुषार्थ माना है, न इंद्रिय प्रीति। कोई आदमी भूखा है वो यदि भोजन करता है उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। कोई बुखार में है और वो दवा लेता है तो उसके ऊपर कोई कानून का आदेश नहीं लगता, और कोई किसी प्रकार से उस पर ये नहीं हुक्म लगता इसको दवाई मत दो। भूखा है, घर में पुलिस आ गई, चोर है, और उसको चोर डाकू जो है पुलिस उसके पीछे पड़ी है, घर में वो आ है लेकिन उस समय वो भोजन कर रहा है, पुलिस वाले नहीं कहेंगे तुम बीच में सूट के चलो, नहीं भोजन करने दो। भोजन करेगा उस समय उसको कोई नहीं उठाएगा, दंड नहीं देगा। जल पी रहा है साहब कि पुलिस वाले आके पकड़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जल पी लो भाई, जल पीना जल पी लो, भोजन करना भोजन कर लो। ये क्या, ये काम, ऐसा जो काम है इस काम की पूर्ति के लिए कहीं पर भी शास्त्र ने कोई मनाही नहीं की है। परंतु हम इस काम के अतिरिक्त उन आवश्यक उन चीजों को इच्छाओं के रूप में ले रहे हैं जिनके बिना हमारा खूब आराम से काम चलता है। संसार की जो इच्छाएं हैं उनमें हमको अपने इच्छाओं में कुछ तो सद इच्छा है और कुछ असद इच्छा है, कुछ तो ठीक है इच्छाएं होना और कुछ है वो गलत इच्छाएं हैं। ये तो निर्णय हमको अपने विवेक से करना पड़ेगा कि भाई कौन सी इच्छा तो है उसको पूरा करने में उद्योग करें और कौन से में उद्योग न करें। तो उसमें ये बात सिद्ध होती है, यदि हमारे जीवन की निर्वाह की कोई इच्छा है वो सद इच्छा है, वो पूरी कीजिए, और जिसके बिना हमारा जीवन आराम से चलता है उसकी इच्छा करने से हमारे जीवन का पतन हो जाएगा, वो इच्छा न की जाए। इसलिए भगवान एक ही बात बोलते हैं कि भाई तुम मेरी इच्छा करोगे तो मेरा प्रभाव रहेगा, मेरी कृपा से मन मनाभाव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्करु मामेवेशिसि सत्यंते, मैं सत्य पूर्वक बोलता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, प्रतिजाने मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो है तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि यहां पर मेरा बल मिलता है। देखो अपने को कल्याण की तरफ चलना है तो किसी न किसी का सहारा लेना है, संसार में भी किसी काम में हम लोग चलते हैं तो किसी न किसी का सहारा लेने का एक स्वभाव है। कोई आदमी, कोई भी प्राणी, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो किसी का भी सहारा न ले। लता है वो वृक्ष का सहारा लेती है, वृक्ष है वो जमीन का सहारा लेता है, ऐसे ही जमीन है तो वो पानी का सहारा लेता है क्यों, पानी से ही पैदा हुई जमीन। ऐसे जल है वो अग्नि का सहारा लेता है, जो जिससे पैदा होता है वो उसका सहारा लेता है। अपने छोटे से बच्चे थे, माँ बाप का सहारा लिया, बड़े हो गए तो अन्न जल आदि का सहारा लिया, और फिर लिए तो हम कोई ऐसा आदमी नहीं कह सका भाई हमें किसी की भी गर्ज नहीं है, हम किसी का भी सहारा नहीं लेते। किसी न किसी का सहारा लेना ये जीव मात्र का स्वभाव है। अब सहारा ही लेना है, लेना पड़ेगा ही, तो भाई उस अविनाशी परब्रह्म परमात्मा दयालु का सहारा लेवे। उसका सहारा तीन कारणों से लेना हमारे लिए अनिवार्य होता है। पहली बात तो यह है कि परमात्मा सर्व समर्थ है, जितना हम सहारा ले रहे हैं वो समर्थ नहीं है, क्योंकि वो जिनका हम सहारा लेते हैं वो और किसी के सहारे पर है। संतों ने विचार किया, जीवन में विचार किया, किसी धनी आदमी के ऊपर की आदमी बड़ा धनी है, खूब पैसा है, मोटर है, कार है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, और आमदनी भी खूब है, पर विचार किया कि ये ज्यादा सुखी है कि मैं ज्यादा सुखी हूं। तो विचार करते करते संत महापुरुष तो भाई क्या बोल सकते हैं, वो तो समझाने के लिए, लेकिन लगा कि मेरे से ज्यादा कोई उनमें विशेषता मालूम नहीं दी, वो परमात्मा का अंश है, इतने अंश में तो मुझे ये मेरे बराबर मालूम दिया, लेकिन मेरे पास रुपया नहीं, पैसा नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई मकान नहीं, कोई कार नहीं, कोई अधिकार भी नहीं, और कोई सत्कार भी नहीं, कोई दुत्कार भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन इसके पास सब कुछ है, लेकिन मेरे से कोई विशेषता मालूम नहीं दी, कोई विशेषता नहीं, मैं ही परमात्मा का अंश हूं, यही परमात्मा का अंश है, खूब धन दाना है तो है इसके पास है, तो उससे क्या लेना देना, कोई महत्ता मालूम नहीं दी। एक संतों ने तो साफ कहा, बीकानेर की बात है, बैठे हुए थे आश्रम में, कहीं बैठे हुए थे तो बैठे बैठे रात को वो देखे, बैठे बैठे भजन करें और कहे कि देखो वो जो वो किले के ऊपर जो लाल लाइट जग रही है वो गंगा सिंह जी महाराज के महल की लाइट है। उस समय बीकानेर के राजा थे, राजघराने का समय था, तो वो बैठे बैठे कहे कि मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास है, मेरे मन में मान्यता है कि हम गंगा सिंह जी से ज्यादा सुखी हैं। तो पास में उनके बराबर के मित्र संत थे, उन्होंने कहा कि आपके पास लंगोटी कितनी है, कि एक लंगोटी है मेरे पास, और क्या है कि और एक लंगोटी है, एक तुम्बी है, तुम्बी पानी का, और सुखी मैं उससे ज्यादा हूं। तो कहा किस बात से सुखी हो आप, कि सुख और दुख तो भीतर का एक अनुभव होता है, हम लोगों ने बाहर के साधन को सुख मान लिया कि ये बाहर के साधन है इसलिए सुखी है, अरे बाहर के साधन खूब है लेकिन अंदर सुखानुभूति नहीं हो रही हो तो अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जिसको अनुकूलता की दृष्टि से अंदर समझ करके और आनंद लिया जाए उसका नाम सुख है, और जिसको अपने से प्रतिकूल मान करके जिसमें दुख उठाया जाए उसका नाम दुख है, जलन होती हो दुख है। तो मेरे अंदर ऐसा कोई दुख का भाव नहीं, और गंगा सिंह जी महाराज के पास महल है, अधिकार है, सत्ता है, धन है, मणि माणिक्य सब है, अंदर इनका हृदय जल रहा है, हमारा हृदय नहीं जलता। इसलिए भाई भगवान का जो सहारा होता है वो भगवान का सहारा सच्चा सहारा है, उससे अंत में कभी दुख नहीं होता, पक्का सहारा है। उसको संसार की दूसरी चीजें कच्ची मालूम देती है, कच्चे डाल पर बैठे, कच्चे डाल पर, संतों ने बताइए कि जीव की क्या दशा हो रही है कि एक कुआ है, कुआ कुएं के पास में एक वृक्ष है, पतला सा वृक्ष है वो उगा हुआ है और उसकी एक टहनी कुएं के यूं ऊपर से जा रही है और नीचे कुआ है और उस टहनी के अंदर एक मधुमक्खी का छत्ता है और छत्ते के अंदर बहुत सी मधुमक्खियां हैं, खूब लाला करके शहद रखती है उनमें, वो टप 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 करके और वो छत्ते में से शहद गिरता है। अब एक आया आदमी, अरे ये शहद मेरे को खाने को मिले, तो वो पतली सी टहनी है उसको यूं पकड़ लिया और यूं पकड़ लिया और वो लटक गया नीचे और मुंह फाड़ने लगा कि इसके बूंद मेरे को मिले। और उधर वो टहनी है पतली और उस टहनी को भी दो प्रकार के चूहे हैं, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा, दोनों चूहा उसको काट रहे हैं उस टहनी को। और वो बड़ी मस्ती के साथ में वो शहद की एक एक बूंद जो कई समय बाद आती है, थोड़ी सी वो आती है वो चली जाती है, आती है चली जाती है। इतने में ही एक संत आ गए। संतों ने देखा कि अरे ये आदमी तो मर जाएगा, कुएं में पड़ेगा अभी। ये टहनी है एक तो स्वयं अपने आप में पतली है, दूसरा इसकी टहनी को ये चूहे काट रहे हैं तो ये तो इसकी जड़ और ज्यादा कमजोर होती जा रही है। ऐसी स्थिति में ये कुएं में पड़ेगा, ये मर जाएगा, इसका शहद क्या काम आएगा। अब उन संतों ने कहा अरे अरे भैया भैया देखो घबराओ नहीं, एक बार तुम इधर जल्दी आओ, तुम इधर आओ मेरे पास आओ, एक जरूरी काम है मेरे पास आओ। तो कहने लगे कि महाराज कैसे आए क्या करें, मेरे को यहाँ शहद है बड़ा अच्छा लगता है, शहद खाने के बाद आऊंगा। महात्मा जी ने कहा कि अरे मेरे पास उससे भी बड़ा एक शहद है, देख आओ जल्दी आओ। तो इससे भी बड़ा, हाँ इससे बड़ा मेरे पास शहद है, देखो आओ तुम, आओ तो सही देखो ये शहद की शीशी है पूरी, आओ। ऐसा करके उसको बुलाया और कहा कि देख ये लाल, ये काले और धोले सफेद चूहे तो इसको काट रहे हैं, पतली सी टहनी, तू कर क्या रहा है। तब जो है उसने उसको समझा कि अरे यदि संत महात्मा नहीं होते तो इस शहद के पीछे हम तो मर जाते हैं। ऐसे ही भाई संसार है, ये एक वृक्ष है और इसके अंदर मौत रूपी एक कुआ है, मौत रूपी कुआ। अब हम लोग संसार के जो विषय के स्वाद है, चाहे वो नेत्र का स्वाद हो, चाहे वो नाक का स्वाद हो, चाहे वो जीभ का स्वाद हो, चाहे वो चमड़ी का स्वाद हो, चाहे वो कान का स्वाद हो, इन पांच स्वाद में से एक कल्पना कर ले, इनमें से हमको सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। अरे वो शहद क्या क्या है, ये जो शहद है ये मधुमक्खियों का मैल है, मैल गंदी चीज होती है। मधुमक्खियां इसमें ब्याती हैं, अंडा देती हैं, मधुमक्खियां मलमूत्र करती हैं और मधुमक्खियां तरह तरह का शहद मिला करके इसमें रस मिला करके रखती हैं। मधुमक्खियां जो हरदम उसमें चिपकी रहती है ना, तो उन मधुमक्खियों का मलमूत्र भी तो उसी में ही छूटता है और उसी में वो ला करके अपना रस छोड़ते हैं, तो अपना सब गंदगी भी उसमें देते हैं और अपने अंडे भी उसी में देते हैं, बाल बच्चे भी वहीं पैदा होते हैं, वो सब गंदगी है। लेकिन उस गंदगी से हम लोगों को घृणा नहीं होती, क्योंकि शहद का जो मिठास है, मिठास के कारण से जैसे हम उसकी वास्तविकता नहीं देख पाते बिना सत्संग के, ऐसे भाई संसार के अंदर हम लोग विषयों का स्वाद लेने में लगे हैं और न तो इन विषयों की कच्चाई समझ रहे हैं। अरे कितने दिन हम ले लेंगे, कितना दिन हमारा ये काम चलेगा। एक संतों के पास कोई गया, कहने लगे महाराज मैं पढ़ाई करना चाहता हूं। संतों ने कहा कि पढ़ाई तो करना, परंतु भाई जो है तुम उल्टी मत करना। उल्टी क्या महाराज जी, उल्टी करना क्या है। उल्टी करना बताया कि भाई पढ़ाई की, उसने पढ़ाई की, वो अपने पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, काम में नहीं लिया, काम में नहीं लिया और केवल शास्त्र का ज्ञान कर लिया और पढ़ाई कर ली, साहब हम तो बड़े भारी जानकार हो गए। पढ़ाई का उपयोग, अध्ययन का उपयोग अपने आत्मज्ञान के लिए होता है। सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्ति में काम आए वो विद्या विद्या होता है, वही ज्ञान ज्ञान होता है। जिसमें हमारा कोई कल्याण नहीं होता, मुक्ति नहीं होती, दुनिया भर की लौकिक ही लौकिक बातों का ज्ञान होता हो, वो काहे की वो बड़ी बात हुई। तो संतों ने यही बात बताई कि भाई सहारा लेना हो, एक भगवान का सहारा लिया जाए। उन्होंने हमको सहारा दिया है। देखो, आप माता के पेट में थे उस समय में, माता के पेट में उल्टे लटके हुए थे, उल्टे। आज कोई शीर्षासन करके देखो, कोई आदमी 5-7 मिनट रह जाए तो रह जाए, कोई को तो अभ्यास करते करते थोड़ा अपना समय बढ़ा लो, परंतु यहां माता के पेट में कितने समय तक, 9 महीने तक ये उल्टे रहे हो, नीचा सिर है और ऊपर जो है पैर है, ऐसे रहे हो। उस अवस्था में हमारे प्राण बचे और हमारा निर्वाह हुआ, इसलिए कहा संतों ने कि पेट ही में जो पेट भरे और पेट की खातिर क्यों रोवे, पेट ही में जो पेट भरे अब पेट की खातिर क्यों रोवे। जब हम माता के पेट में थे तब भी उस विधाता ने हमारा पेट भरा, अब इस पेट के लिए रोने की क्या, हमारा हम क्या खाएंगे, हम क्या करेंगे, हमारा संसार में कैसे निर्वाह होगा। भगवान ऐसी अवस्था में हमको विश्वास देते हैं कि भाई माता के पेट में थे और माता के पेट में रहने पर हम न हम कुछ कर सके, न माँ कुछ कर सकी। माँ भी उस समय हमारे लिए कुछ नहीं कर सकी, कोई कुछ नहीं कर रहा था। माँ तो अपना भोजन करती है, लेकिन भगवान कैसी संरचना करते हैं। देखो, लोग कहते हैं भगवान है कि नहीं, अरे भाई भगवान है कि नहीं ये बात क्यों कही जा रही है। ये संसार बनाया है तो कोई न कोई बनाने वाला है, तब न बनाया है कि बन गया। बिना कर्ता के कोई कर्म होता है क्या? बिना कर्ता के कोई कर्म नहीं होता। कोई कर्म है तो इसको कोई न कोई करने वाला है। अब ये मकान बना है, इसका मतलब कारीगर लोग थे तब मकान बना, कारीगर नहीं होते तो मकान नहीं बनता। अब वो कारीगर जिंदे है कि मर गए है कि अलग चीज है, लेकिन मकान तो है लेकिन कारीगर नहीं। कारीगर है कि नहीं हमको तो संदेह हो रहा है। अरे भाई, कारागर नहीं होते, कारीगर नहीं होते तो ये कौन बीम बनाता, कौन स्लेब डालता, कौन क्या इसको चिनाई करता, कौन करता। तो ये कर्म है तो इसका अर्थ कोई ना कोई करता है। ऐसे ही सृष्टि रूप कर्म है तो इस सृष्टि को बनाने वाला भी कोई ना कोई है ही। अब उसको कोई किस नाम से बोल दो, कोई किस नाम से बोल दो, कोई किस नाम से बोल दो, उससे मतलब नहीं है। भगवान की सत्ता तो स्वीकार करनी पड़ेगी, बड़े से बड़े तार्किक व्यक्ति आ जाए भले। हमारे शास्त्रों में संतों ने जो अनुभव से बात जानी है वो अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण होता है। इतिहास प्रमाण हो कोई के हम नहीं मानते, अच्छी बात है भाई। आंखों से देख लिया तो कि सब आंखों में भी बीमारी होती है इसलिए हम नहीं मानते। अब पीड़िए को कोई पीड़ा ही देखेगा वो प्रमाण थोड़ा ही होता है, अच्छी बात है भाई। हमने सुना, सुनने को भी हम प्रमाण नहीं मानते। हम किसी को भी प्रमाण नहीं मानते, हम तो हमारे अनुभव को प्रमाण मानते। अच्छा, अनुभव को प्रमाण मानते हो तो भाई ये संसार तुमको दिखता है कि नहीं? कि संसार दिखता है तो संसार एक बनाया हुआ दिखता है ना, क्या संसार बना हुआ है? तो संसार बना हुआ है तो इसको कोई ना कोई बनाने वाला है। आकाश को देखते हो, सूर्य को देखते हो, चंद्रमा को देखते हो, पृथ्वी को देखते हो, सागर को देखते हो, क्या क्या नहीं देखते, सब देखते हैं। पर इनको किसने बनाया बताओ, किसने बनाया? किसी ने भी नहीं बनाया। कि अपने आप बन गए क्या? अपने आप तो नहीं बन, अपने आप कभी कोई बनता ही नहीं है, अपने आप कैसे बनेगा? अच्छा, कोई कहे कि साहब ये अपने आप ही बन गया, अपने आप बन गया तो किसी को तो अनुकूलता मिलती है, किसी को प्रतिकूलता मिलती है, कोई जीव बड़ा सुखी है, कोई जीव बड़ा दुखी, ये भेद क्यों हुआ? अपने आप बने तो एक जैसा बनना चाहिए, अपने आप बने तो भेद क्यों हुआ? कितने तर्क कर लो, एक को काटोगे दूसरी बात आएगी, दूसरी काटोगे तीसरी बात आएगी, उसमें ही आएगा कि साहब कर्मों का अपना अपना फल है। तो ये कर्मों का फल देने वाला कौन है? चोर चोरी करता है और उसको मजिस्ट्रेट दंड देता है, तो मजिस्ट्रेट है तब ना उसने दंड दिया तब तो वो जेल खाने में गया। ऐसे कैसे जेल खाने में जाए? ऐसे हमने कर्म किए, हमको कर्म का फल मिलता है, इसका मतलब कोई ना कोई कर्म का फल देने वाला है। तो कर्म करने वाला है, सृष्टि रूप कर्म करने वाला वो है भगवान, और हमको हमारे कर्मों का फल देने वाला है वो है भगवान। उस भगवान की सत्ता को मानना पड़ेगा और वो भगवान हमारे हमारे आराध्य बन जाए, हमारे अपने बन जाए, उनके हम शरण हो जाए, कितना बड़ा काम हो जाए, कितना बड़ा काम हो जाए। लोक व्यवहार में हम देखते हैं कि किसी आदमी का किसी बड़े मिनिस्टर के साथ कोई न कोई संबंध हो जाए, ताल्लुक तालुका बन जाए, भाई इसका हमारे साथ ताल्लुक है, ये हमारे वो जान पहचान के अजीज मित्र है साहब, अच्छी बात है। उसका एक नशा रहता है उसको कि मेरे अमुक मिनिस्टर है, मेरे केंद्र में मिनिस्टर है, कि इतने बड़े हैं, वो सब मेरे अधिकारी हैं, कोई उसको डर नहीं रहता, वो निधड़क रहता है। एक आदमी की जान पहचान से आदमी इतना निधड़क रहता है तो भाई हमको तो गीता ने कहा है और भगवान ने खुद ने अपने मुख से कहा है, ममई वांसो जिगुलाओ, सब जीवों को आश्रय देने वाला मैं हूं, सबका परिचित मैं हूं, और सुरिदम सर्वभूतानाम, मैं प्राणी मात्र का सुरिद करने वाला हूं, प्राणी मात्र का, किसी का भी बुरा करने वाला नहीं, सबका सुरिद हूं, सुरिद सबका अपना हूं, सबका भाई हूं, तुम जो मुझे मानो वो मानने के लिए मैं तैयार हूं, चाहे भाई मानो, चाहे बाप मानो, चाहे माता धाता पितामह, गीता बोलती है मां मान लो, धाय मां मान लो, धारण करने वाला मान लो, पिता मान लो, पितामह मान लो, दादा मान लो, पर किसी न किसी प्रकार से मानो जरूर, बिना माने ऐसे ही संसार में न जाने किस किस का आश्रय लेकर के पकड़ पकड़ करके खत्म हो जाओगे। संसार सागर है भाई, संसार सागरात, सागर में हो तो भाई नौका में नौका का आश्रय लेना चाहिए। अब सागर में हम क्या करते हैं, सागर में हम मगरमच्छ का आश्रय लेते हैं, मगरमच्छ से मगरमच्छ पर बैठ करके सागर पार हो जाएंगे, मगरमच्छ पर बैठ करके सागर पार नहीं हो सकते, वो मगरमच्छ ही खा जाएगा। इसलिए भागवत में लिखा है, सनकादिकों ने बताया, सनकादिकों ने उपदेश में बताया कि ये अपने इंद्रियों के जो भोग हैं ये मगरमच्छ के समान है, इनके ऊपर बैठ करके हम संसार में सुख लेकर के और इससे पार होना चाहे, मुक्ति का सुख लेवे, आनंद का सुख लेवे, कल्याण का सुख लेवे, भाई खतरा है, खतरा है। इसलिए भगवान का जो चरण है, चरणों को ही जहाज माना जाए, और कहे भगवान जो कुछ हुआ सो अब आपके सामने हुआ है, कोई पीठ पीछे तो हुआ नहीं, आप सर्वज्ञ हो, मैं तो एक जन्म के पाप जानता हूं, आप तो हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पापों को जानते हो, मैं ऐसा पापी हूं और ऐसा पतित हूं, और अब मैं पावन होने की इच्छा करता हूं, यदि मेरे जैसा पतित आपकी शरण में नहीं आए तो आपको पतित पावन कौन कहेगा, आप एक पापी का उद्धार करके अपने नाम को सार्थक कीजिए तो सही, मैं आपकी शरण में हूं। तो भगवान कहते हैं भैया अब मेरी जबान बंद हो गई, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुमको तो एक दो पाप लग दिखते होंगे, मैं तेरे सारे पाप मुक्त कर देता, सारे के सारे पाप। कितनी बड़ी बात गोस्वामी जी महाराज के भगवान राम बोलते हैं कि करोड़ों ब्राह्मणों को मार दे और वो ब्रह्म हत्या वाला मेरी शरण में आ जाए तो अभी भाई मैं उसका त्याग नहीं कर सकता हूं। तो बताओ भगवान सर्व समर्थ, उनका आश्रय हम लेते हैं तो कोई हर्जे की बात नहीं, क्योंकि उनके बराबर कोई समर्थ नहीं। भगवान सर्वज्ञ, वो जितना जानते हैं हमारे पाप को, हमारे कल्याण की इच्छा को, और को जो जानते हैं उतना कोई दूसरा जानने वाला नहीं। तो भगवान सर्व समर्थ, भगवान सर्वज्ञ और भगवान परम दयालु, बस भगवान की दयालुता है। इन तीन में से एक की भी कमी हो जाए तो देखो हमारी बड़ी बाधा पड़ जाए, सर्वसमर्थ तो है और सब जानते हैं, लेकिन दया नहीं हो तो क्या करें। भगवान के अंदर दया तो है लेकिन सर्वसमर्थता नहीं है, तब भी बड़ी मुश्किल है। कोई आदमी समुद्र में डूब रहा है, हम भी रो देंगे, अरे भैया वो डूब रहा है बचाओ, पर बचा नहीं सकते, तो वो दया क्या काम आई? वो दया भी काम नहीं आई। कहते हैं कि हम सर्वसमर्थ भी हैं, दया भी है, लेकिन भाई हमको पता ही नहीं है कि वो डूब रहा है क्या, हमको कहना तो चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। भगवान को सब पता है समुद्र में डूबा है, भगवान उसको बचा सकते हैं और भगवान दयालु है। अब बताओ वो डूब सकता है क्या? वो नहीं डूब सकता। इसी प्रकार से भाई भगवान बोलते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तुम अपने पाप वगैरह से घबराओ मत, अहम मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे पापों से मुक्ति मैं दिलाऊंगा, तुम्हारी जो फाइल है पापों वाली वो फाइल मेरे, मैं अपने आप ही अपने मंगा करके और उसको वही फाड़ करके जला करके और समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे उस फाइल में कितनी भी गंदगी आई हो, कैसे भी कितनी कितनी तुम्हारी रिपोर्ट हो, अंत में तो मेरे पास ही आती है, मैं उसको फाड़ करके उसको जला करके रद्दी की टोकरी में फेंक दूंगा। अर्जुन की बोली बंद हो गई, अर्जुन क्या बोले अब, और भगवान ने भी उपदेश देना स्वतः ही बंद कर दिया। अहम त्वा सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शोच, ऐसा उपदेश देकर अपना उपदेश समाप्त कर दिया, भी मेरा खजाना अब खाली हो गया, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। फिर कहा इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन नचाशुषु सवे वाच्यमि, तो बाद की बातें हैं। भगवान को विश्वास था कि इससे ऊंची मेरी कोई बात हो नहीं सकती, और अर्जुन ने जरूर पकड़ी। अहम त्वा सर्व पापी भी मोक्षयिष्यामि मा शोच। अब देखो भगवान के और अर्जुन के बीच में समझौता हुआ, हमारे और भगवान के बीच में बंटवारा हुआ। क्या हुआ? भगवान ने कहा देखो एक कुछ काम तुमको करना है, कुछ काम मेरे को करना है, तो तुमको क्या करना है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग करो। लोग अरे धर्म का त्याग कह रहे, गीता धर्म का त्याग के लिए बोल, अरे धर्म के त्यागी केवल शब्द पर मत विचार करो, इसकी गहराई में विचार करना है। क्या? कि सब कर्मों का जो आश्रय है उसका त्याग करना है, कर्म का आश्रय होता है उसका त्याग करना है, धर्म का थोड़ी त्याग करना है। जब भगवान के सामने ये बात आई कि मैं धर्म में सम्मूढ़ चेता हूं, तो भगवान ने कहा कि तू धर्म की पंचायती करे क्यों, वो धर्म सम्मूढ़ नहीं था, वो कर्म सम्मूढ़ था। तो गीता में धर्म और कर्म ये दोनों पर्यायवाची आ रहे हैं, क्योंकि कर्तव्य कर्म जिसका होता है वही उसका धर्म होता है। तो धर्म सम्मूढ़ चेता का अर्थ कर्म सम्मूढ़, मैं करूं ये करूं कि वो करूं कि क्या करूं, तो भगवान कहते हैं तू सर्वधर्मान परित्यज्य, ये करूं वो करूं, ये बात छोड़ दे, माम एकम शरणम व्रज, आवे ना तू क्या लाए लगी हुई है सब जगह, तो मेरी शरण में आ जा। जैसे उधर से रास्ता बंद हो जाए और कहे इसी रास्ते जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, जगह सब काम छोड़ करके, ऐसे कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तेरा काम है मेरी शरण में आने का, और मेरा काम क्या है, अहम त्वा सर्व पापी भी मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे सारे पापों को मैं तेरे से दूर करूंगा। और भैया एक काम साथ में और करना है क्या, मां सोचे एक तो मेरी शरण में आ जाओ और एक तुम निश्चिंत हो जाओ। सरल काम तो भगवान ने जीव को दिया है, और कठिन काम है वो कठिन काम भगवान ने अपने जिम्मे रखा है कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान ये भी कह सकते थे कि भैया जन्म जन्मांतर से तुम मानव कितनी बार बन बन करके आए हो, कितनी बार माता के पेट में तुमने सौगंधे खाई है, तो क्या अब मैं भजन करूंगा, अब मैं आपका नाम लूंगा, अब मैं आपकी तरफ चलूंगा, लेकिन तू तो सुधरा नहीं, अब भैया तू तेरा भजन करके पाप से शुद्ध होकर के मेरे पास आ। यदि ऐसा बोलते तो कोई अनुचित नहीं था, पर वो भगवान है कैसे बोलेंगे, दया सागर है, अपराधी पर इतनी बड़ी दया करने वाले एक भगवान है, जिनके यहां हम कितनी बार प्रतिज्ञा कर करके आए, उन्होंने प्रतिज्ञाओं का उनके सामने हमने उनके देखते देखते प्रतिज्ञाओं का नाश किया, हमने खंडन किया, और फिर भी भगवान आंख बंद करके बैठे हैं। मानव शरीर में भगवान उतनी प्रतिकूलता भेजते हैं जितने से हमारे कल्याण में बाधा नहीं पड़ती। और फिर उसके बाद कहते हैं कि देखो तुम तो मेरी शरण में आ जाओ और चिंता मत करो बेटा, चिंता मत करो, ये काम तो अपने को दिया। और अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, कितना बड़ा काम भगवान करने के लिए तैयार है। ऐसे भगवान के अलावा हमको कोई दूसरा सहारा, इतना मजबूत, इतना दृढ़, इतना अविनाशी, इतना आश्वासन देने वाला, इतना आत्मीयता का आश्रय हमको दूसरा कोई नहीं दे सकता। इसलिए भगवान के शरण होकर के हमको इस संसार सागर से पार होने के लिए भगवान से ही बराबर प्रार्थना करनी चाहिए।